शांति। आज भट्टी का दूसरा दिन है, प्रातःकालीन सत्र है और इस सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आप ज्ञान में आए। आप उस समय स्कूल की छात्रा थी, फिर आपने लौकिक अलौकिक पढ़ाई जारी रखी और 10th मैट्रिक की एग्जामिनेशन के बाद आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं और इसलिए आरंभ में आपने सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक आपने भावनगर सबझोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी। फिर तो 1993 में ज्ञान सरोवर अकेडमी के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ तो बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया। वर्षों तक आप वहां सेवा करते रहे और फिर जब शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ने लगा तो बाबा ने आपको फिर से करीब 2009 या 10 में वहां निमित्त बनाया और वहां पर रहकर आप देश विदेश की सेवाएं कर रही हैं। हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, राजयोग प्रशिक्षिका हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की भी आप प्रशिक्षिका हैं और भट्टियों की भी आप प्रशिक्षिका हैं। बहुत ही बाबा के अनुभवी रत्न हैं आप, ज्ञान की बहुत गहराई में उतरकर ज्ञान के हीरे मोती निकाल कर लाते हैं और वही हीरे मोती आज आप सबके सामने बांटेंगे। तो जैसे ही हम सब का ब्राह्मण जीवन होता है तो बाबा से दो वरदान मिलते हैं, योगी भव, पवित्र भव। तो ये शब्द तो हमारे लिए नए नहीं हैं, लेकिन नया क्या होगा आज, इसकी गहराई, इसकी स्पष्टता। तो आज बाबा ने मुरली में कहा हमें, याद का और पवित्रता का बल जमा करना है। तो आज हम विस्तार से, गहराई से, दीदी के अनुभव से इस बात को समझेंगे कि याद का बल क्या होता है, पवित्रता का बल क्या होता है, इसको कैसे जमा करना है, इसके क्या फायदे हैं आदि आदि दीदी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीन बातें कौन सी याद आई? पहली ओम शांति माना, मैं कौन, अपने आप को रियलाइज करना, मेरा कौन, कौन है मेरा, बाबा मेरा है, और ये दोनों रियलाइजेशन अच्छी है तो तीसरी बात ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाती है कि मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। रोज मुरली में बाबा हमें समझाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये क्लियर हो जाता है। मुंझने की कोई बात नहीं, किसी से पूछने की कोई बात नहीं। ऐसा सद्विवेक बाबा ने हम बच्चों को दिया है। भगवान से सबसे बड़ी प्राप्ति, ब्राह्मण जन्म होते ही कौन सी गिफ्ट मिलती है, दिव्य बुद्धि की, जो सबसे बड़ी गिफ्ट है। सही बुद्धि, सही विवेक ना होने के कारण ही सारी दुनिया भटक रही। हम ठिकाने पर लग गए हैं, लक्ष्य में स्थित हो गए हैं। अब हम पुरुषार्थ करते हैं प्रतिदिन लक्ष्य के समीप जाने का, मंजिल पर पहुंचने का। तो सबसे पहला है ज्ञान का बल, सत्य ज्ञान का बल, जो सिवाय बाबा कोई दे नहीं सकता है। मूल सनातन सत्यों का ज्ञान, हमारा जीवन और ये संसार का खेल किन सिद्धांतों पर चलता है, बाकी तो सब कुछ नैतिकता का ज्ञान दुनिया में बताते हैं, परंतु मूल आध्यात्मिक सत्यों का ज्ञान, जो चैतन्य शक्ति आत्मा से संबंधित, वो बाबा कर बताते हैं। और हम सबका अनुभव है कि जब बेसिक ट्रूथ्स क्लियर हो जाते हैं तो व्यावहारिक बातों का निर्णय, सही निर्णय बहुत सहज हम ले सकते हैं। एक एक सत्य बाबा ने हमें बताए। देखो, योग की लंबी चौड़ी विधि सब बताएंगे अलग अलग, पर मूल बात योग लगाने वाला कौन और किससे लगाना, वो कोई नहीं बताता। वहां कहेंगे अपने अपने इष्ट को याद करो, आत्मा और परमात्मा का और ये सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत का, आलोक परलोक का, कर्म की गति का सही ज्ञान बाबा हमें देते हैं। बिल्कुल सहज शब्दों में, सत्य हमेशा सरल होता है। अधूरा ज्ञान है वहां कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज की जाती, क्योंकि मेरी बात सत्य नहीं है तो मुझे इधर उधर की अनेक बातें लेनी पड़ती। सत्य सिंपल है। भगवान का ज्ञान इतना सरल और सहज। इतिहास में बताते हैं कि हिंदू धर्म के शास्त्र संस्कृत में लिखे गए, आम जनता समझ नहीं सकती, तो पंडितों ने गुरुओं ने मोनोपोली कर ली कि हम समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि उसमें विद्वत्ता चाहिए, पांडित्य चाहिए। इसलिए प्रभाव खुद अपने आप अपने पर नहीं ले पाए, जबकि जैनिज्म बौद्ध धर्म उनकी किताबें आम भाषा में लिखी गई, पाली मगधी भाषा, तो जनता खुद पढ़ सकती थी, तो डायरेक्ट उसके प्रभाव में आ सकती। आज भी बाबा ने कहा था ना, तुम्हारी असली भाषा कौन सी है? हिंदी। तो हम सहज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ज्ञान सत्य हो सहज भाषा में और सहज तरीके से बाबा ने दिया। बाबा कहते हैं ना, अनपढ़ गांव के बच्चे भी समझ सकते हैं। वो ज्ञान हम रोज बाबा से सुनते हैं, समझते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं, परंतु समझते। बाबा रोज कहते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये बुद्धि की बातें हैं, ये समझने की बातें हैं, क्योंकि समझेंगे तो स्मृति में रहेगा, तो अभ्यास में लाएंगे, तो अनुभव होगा, तो स्वरूप बनेंगे। इसलिए मुरली क्लास अच्छी रीति करना है, ये बेस है, उसके आधार पर सारे दिन का पुरुषार्थ चलता है। अगर मुरली ही अटेंशन से नहीं सुनी समझी तो सारा दिन अभ्यास क्या करें। मुरली सुनते हैं, समझते हैं, मुख्य पॉइंट्स नोट डाउन करते, बस फिर सारा दिन हम उस पर पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा, अब तक जो कुछ पढ़ा है वो भूल जा, क्योंकि जीवन में जो धारण करना है, रोज जो सुनना है, अनेकों को जो सुनाना है, वो तो जो बाबा ने सुनाया वही सुनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनने में ये कोई काम का नहीं है, लौकिक में काम का है, वो भी हिस्ट्री तो कोई राइट है नहीं, अभी की हिस्ट्री। पर बाबा ने संडे की मुरली में एक बात कही थी कि ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ है परंतु स्मृति स्वरूप बनना, इमर्ज रखना, वो याद का बल, वो स्मृति का बल। तो बाबा ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि की झोली को भरते। ज्ञान रत्न नहीं थे तो बाबा कहते बुद्धि में ठिकर भरा हुआ, दुनिया की बातें, शास्त्रों की बातें, माना अज्ञान भरा था, मिथ्या ज्ञान भरा था, आधा अधूरा ज्ञान भरा था, क्योंकि फाइनल ट्रुथ कोई नहीं बता सका। पर सत्य ज्ञान रोज बुद्धि में भरते हैं और रोज सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, फिर वो स्मृति रूप बन जाता है, वो फिर याद रह जाता है, स्मृति बन जाती है। और रोज पढ़ने का, रिवाइज करने का अभ्यास है तो टाइम पर वो स्मृति याद आती है। अगर रोज अभ्यास नहीं है तो टाइम पर याद भी नहीं आता है। कहते हैं ना, युद्ध ना हो तो भी गवर्नमेंट आर्मी का पालना करती है और उनको रोज प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि अचानक युद्ध में जाना पड़े तो भी उनको अभ्यास रहा होगा तो कार्य कर सकेंगे। तो रोज बाबा ने कहा ना, बुद्धि में समाया है पर स्मृति में रहे तो खुशी रहेगी। समय पर स्मृति आएगी तो अपने आप को संभाल सकते हैं। भाई आइसक्रीम खाया, पर जितनी बार याद करेंगे कि आज तो बहुत अच्छा आइसक्रीम खाया, आज तो बहुत अच्छा आइसक्रीम खाया, आज तो गुलाब जामुन खाया, जितनी बार याद करेंगे उतनी बार स्वाद भी आता है और खुशी भी रहती है। खाया एक बार, पर जितनी बार याद करेंगे खुशी होगी, अनुभूति होंगी। तो याद का बल माना स्मृति का बल। मनुष्य का स्वभाव है याद करना, किसी न किसी की याद आती ही रहती, कभी व्यक्ति की याद, कभी वस्तु की याद, कभी सुख के प्रसंग की याद, कभी कोई दुखद घटना याद आ जाती है। कोई प्राप्ति की याद, कुछ गंवाने की याद। हमारा जीवन अनेक प्रकार की यादों से और उन यादों के अनुभवों से भरा हुआ है, है ना। कई बार तो उन यादों में ऐसे खो जाते जैसे वो अभी हो रहा है ना, इतने उसमें खो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, कोई पूछता है कि अभी यहां से कोई गया, तो हम कहते हैं सॉरी भाई, मैं तो अपने विचार में खोया हुआ था, मुझे पता नहीं है। हा? क्योंकि जैसी याद वैसे अनुभव होते, जैसी याद वैसे अनुभव, अनेक प्रकार की याद और अनेक प्रकार के अनुभवों से जीवन हम सबका भरा हुआ है। अब बाबा ने सत्य ज्ञान दिया तो समझ में आया कि कौन सी बातें याद करनी है और कौन सी बातें भूल जानी, कहां फुल स्टॉप लगाना है, किन बातों को याद करने में फायदा है। कोई व्यक्ति है जिससे हमें बहुत सुख मिलता है, साथ मिलता है, उनकी याद से खुशी होती है, आनंद आता है। कोई दुखद प्रसंग याद करते हैं तो दुख का अनुभव, तो जैसी स्मृति वैसी समर्थि। स्मृति से समर्थि आती है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अनुभव तो है जीवन में सबको, पर बाबा ने सही स्मृतियों से जीवन भर दिया, नहीं तो वही दुख की बातें याद कर करके दुखी रहते हैं। हम जबलपुर में गए थे एक प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम के लास्ट में एक फैमिली हमें मिली थी और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी, है ना, उनके बच्चे, उनकी युगल सब थे। तो वो भाई के बचपन में, जब उनके पिताजी भी थे, तो होली के त्योहार में बहुत बेअदबी से लोगों ने होली में उनके पिताजी के साथ व्यवहार किया। होली में तो ऐसे करते हैं ना, यूपी एमपी के तरफ तो बहुत होती है वो त्योहार, तो कुछ अच्छा ढंग से नहीं व्यवहार किया होगा। और वो जो भाई थे वो अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो तो झुंड का झुंड होता है, वो अकेला कुछ कर नहीं पाया, बचा नहीं पाया, सेफ नहीं कर पाया या सामना नहीं कर पाया। वो चीज इतनी दुख के साथ भरी थी कि अब सब कुछ अच्छा होते हुए, परिवार अच्छा, नौकरी धंधा पैसा, पर वो व्यक्ति बहुत दुखी रहता, डिप्रेशन, क्योंकि वो बैड फीलिंग अंदर जो जम गई कि मैं, मेरे होते मैं कुछ नहीं कर पाया मेरे पिता के लिए, इतना दुख अंदर भरा हुआ, पर बाबा के ज्ञान का जादू, सत्य ज्ञान की शक्ति, हरेक के जीवन में ऐसे ऐसी फीलिंग्स होती है, ऐसी घटनाएं घटती है, लोगों के कई बार ऐसे व्यवहार हमारे साथ होते हैं, पर बाबा के बनने के साथ वो सब बातें खत्म हो गई, है ना? और हम श्रेष्ठ स्मृति में रहते, तो याद का बल माना श्रेष्ठ स्मृति का बल। हर बात की सही स्मृति हमें मिली, नहीं तो जैसे नहीं काहे को ऐसी दुनिया बनाई भगवान ने, है ना? कोई भगवान से नाराज, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, है ना? इन बातों से दुखी रहते, पर हमें बाबा ने आदि मध्यांत की सभी बातें दी। और ये समय, भैया फैन करना, ये समय कौन सी स्मृति में रहने का समय है ना? बीती बातों की याद में नहीं रहना है, जो हो गया सो हो गया, है ना? जैसे कहीं सोचते रहते हैं ना, मुझे ऐसे क्यों मिले, मेरा पति ऐसा मुझे क्यों, मेरी पत्नी ऐसी क्यों। बाबा कहते हैं कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कुछ मिला है एक्यूरेट मिला, जो मिलना चाहिए वही मिला। अंडरस्टैंड करने की बात है, आगे पीछे के माइनस प्लस हिसाब किताब जो कर्म का है उसके रिजल्ट अनुसार ही मिला है, इसलिए अफसोस नहीं करना, दुखी नहीं होना। और मुझे ऐसा क्यों मिला, उस व्यक्ति के लिए हम जितना ज्यादा सोचते हैं, बाबा कहते हैं ना उस समय हम खुद को रियलाइज नहीं करते हैं कि हम भी कैसे, हम भी कैसे, है ना? हम भी तो परफेक्ट नहीं है, हमें भी कोई टॉलरेट कर रहा है, हमें भी कोई एडजस्ट कर रहा है, हमें भी कोई एक्सेप्ट कर रहा है, हम भी तो परफेक्ट नहीं है ना। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन एक्यूरेट नहीं है, इसलिए दूसरी बातें ज्यादा माइंड कर लेते। अब रोज बाबा आत्मभिमानी बनाते हैं, माना सेल्फ को रियलाइज करना कि रियली आप क्या थे ओरिजिनली और अब क्या है। अभी हमारे में भी कई कमजोरियां हैं, अवगुण हैं। जब खुद की रियलाइजेशन आती है तो फिर दूसरे के लिए कोई विचार नहीं चलता है। कुछ दिनों पहले की मुरली में बाबा ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट तो अंत में पता चले। ये तो अभी का रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट तो अंत में पता चलेगा, कौन कब गैलप करके आगे बढ़ जाए किसको पता है। ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है कि ये देखो कैसे हैं, ठीक नहीं है, नहीं, हमें किसी का फाइनल रिजल्ट पता नहीं। तो बाबा कहते हैं ना, अभी आप महारथी हैं, अभी आप सर्विसेबल है, अभी आप अनन्य है, अभी आप बाबा के साथी सहयोगी है, पर अंत के रिजल्ट में भी मुझे महारथी रहना, अंत तक ऐसा रहे। भाई त्रिमासिक छह मासिक एग्जाम में तो मैंने फर्स्ट लिया था, पर इम्पोर्टेंट क्या है, फाइनल एग्जाम में लेना है। तो अंत तक हमें अपनी ऊंची स्मृति स्थिति और स्वरूप में रहना। राइट टाइम राइट कर्म करना, और उसके लिए चाहिए उस समय मेरी स्मृति यथार्थ रहे, है ना। बाबा मिलने के बाद भी कई इन बातों से अभी तक भी दुखी रहते हैं कि मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला, मुझे ऐसा परिवार क्यों मिला, मुझे मेरा नौकरी धंधा बरोबर नहीं है, ऐसा क्यों। भाई जो मिले जैसे मिले, पर अब कौन मिला है, अब कौन मिला है वो क्यों नहीं याद रखते, है ना। कौन मिला है उसकी खुशी हमें रहे, तो वो रिप्लेस करना है जो हमारी बुद्धि में रॉन्ग मेमोरीज है, गलत स्मृतियां जो स्टोर हो गई है उसको रिप्लेस कर। इसलिए बाबा का बहुत अच्छा स्लोगन है कि पास्ट की कड़वाहट को याद कर वर्तमान को कड़वा मत बनाओ। चलो भाई कोई ऐसी घटना हो गई जीवन में, और वो होती है, है ना, आगे के कर्मिक अकाउंट अनुसार कुछ भी ऊपर नीचे जीवन में होती रहती है, परंतु वो हो गई ना, पास्ट इज पास्ट। अब मुझे कौन सी स्मृति में रहना है। मान लो कोई भूल हमसे हो, कोई गलत काम हो गया, अब उसको याद कर करके वर्तमान समय को और मन की स्थिति को क्यों वेस्ट करना। पर पास्ट को पास्ट करने की शक्ति ऐसे नहीं आएगी, उसके लिए चाहिए जो कुछ हुआ आप अकेले शांति में बैठकर बुद्धि के स्क्रीन पर वो बात लाओ, क्या हुआ था, उसमें मेरी भूल क्या क्या थी या क्या नहीं थी, अच्छी तरह रियलाइज कर अब मुझे क्या करना है। बाबा के साथ बैठकर अच्छी तरह रियलाइज कर फिर उस बात को बिंदु लगा सके, नहीं तो ड्रामा ड्रामा करते रहेंगे और दुखी भी होते रहते। कोई बात नहीं, ड्रामा करते हैं फिर रोते रहते। वो बिंदु तब लगता है जब हम बाबा के साथ बैठकर उस घटना को पूरी तरह बुद्धि में लाओ और फिर देखो इसमें मेरी क्या भूल है, औरों की क्या भूल है, और अब क्या मुझे करना, तो फिर बिंदु लगेगा। कई बार हम आपस में तेरी मेरी ऐसी वैसी बातें करते हैं ना, फिर फिर कहेंगे छोड़ो बाबा जाने और वो जाने। अरे भाई घंटा बात किया और फिर कहते हैं कि छोड़ो, तो पहले ही छोड़ देते, टाइम भी वेस्ट किया, खुद की अवस्था भी जो थी वो डिस्टर्ब की। इससे तो पहले ही फुल स्टॉप लगाओ कि नहीं, हमें ये बात करनी ही नहीं है। करते हैं ना ऐसा, चलो कोई बात नहीं, ड्रामा हो गया, सारा विवेचन करके फिर कहते हैं कि ड्रामा। परंतु अगर आप सचमुच स्व परिवर्तन करना चाहते हैं और वो शुरू कर देंगे, तो फिर जो भूल हुई उसको बार बार बुद्धि में लाके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर अब मुझे क्या करना, अब मुझे क्या करना, उस पर आप फोकस हो सकेंगे। तो हर समय, हर घटना, हर व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ स्मृति, जैसे बाबा हम बच्चे कैसे भी पति तमो प्रधान बन गए, गिर गए, हमने सब कुछ गंवा दिया, पर बाबा ऊंची स्मृति से हमें देखते, ऊंची दृष्टि से देखते, ऊंची भावना से हमें देखते। अब हमें रहना तो सबके साथ ही है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, हमें मिलके पढ़ना है, मिलके सेवा करनी है, और वैरायटी स्वभाव संस्कार तो हम सबके है ही है। अगर इन सबके साथ रहते, पढ़ते, सेवा करते, मुझे अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, ऊंची अवस्था बनानी है, मुझे कुछ बनना है, तो मुझे हर आत्मा के लिए हर समय श्रेष्ठ स्मृति रखनी। बाबा ने हमें कैसे ऊंचे उठाए, बाबा ने हमारा वर्तमान स्वरूप नहीं देखा। देखो वर्तमान स्वरूप तो वो था ना जब बाबा ने अपनाया तब, कि देवताई स्थिति के एक भी लक्षण नहीं थे। उस समय बाबा ने हमारे में क्या देखा कि तुम ही देवता थे, इनके द्वारा ही मुझे सतयुग की स्थापना करा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। हम क्यों नहीं कह पाते हैं या एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? टकराव का कारण तो यही है ना कि हम एक दो को स्वीकार नहीं कर पाते। भाई हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा ने हमें स्वीकार किया और हम सब ने भी क्या लक्ष्य लिया कि अब जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा हम बनकर दिखाएं। जब भगवान ने ये उदारता दिखाई कि हम टेढ़े बांके जैसे भी हैं, उसने एक्सेप्ट किया, तो देखो हमारे में भी बल आया ना कि बाबा जैसा बनाना चाहते हैं मैं ऐसा बन के दिखाऊं। तो कितना स्व परिवर्तन। तो श्रेष्ठ स्मृति का स्वयं पर प्रभाव, श्रेष्ठ स्मृति का अन्य पर प्रभाव देख। मूल सत्य ज्ञान शिव बाबा ने दिया, है ना। वो तो ब्रह्मा को भी नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा बाबा की विशेषता और विशेष रोल क्या रहा कि उन मूल सत्यों पर विचार सागर मंथन कर अपनी लगन, अपने अनुभव, अपने पुरुषार्थ के आधार पर बाबा ने कितना विस्तार पूर्वक हमें समझा, जो रोज मुरली में हम सुनते हैं। और 50 वर्ष अव्यक्त वाणियों के द्वारा संपूर्ण बनने का पूरा विस्तार हमें बताया कि पुरुषार्थी आत्मा को संपूर्ण बनना है तो वो सारा संपूर्णता का विस्तार अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने किया। ये ब्रह्मा बाबा की विशेष देन, और इतना विस्तार से और इतनी गहराई से बाबा ने क्यों समझाया, ताकि हम बाबा से फुल्ली कन्विंस हो जाएं कि यही सत्य है। हमारी बुद्धि में वो निश्चय बिठाने के लिए, क्योंकि बाबा देखो धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, हर प्रकार से बाबा समझाते, क्योंकि हरेक का लॉजिक अलग अलग है ना। हरेक को बाबा ने कन्विंस किया, और जो जितना कन्विंस होता है उतना वो पुरुषार्थी बनता है ना। जैसे कोई बात हमें समझ में आ जाती है तो हम कहते हैं बस अब समझ में आ गया, अब मैं कर लूंगा, अब मैं कर लूंगा। जब समझ में आ जाए, आपका लॉजिक कन्विंस हो जाता है, फिर वो स्वरूप में आने लगता है, फिर आपकी बुद्धि श्रेष्ठ स्मृति से भरी रहे। जैसे बाबा ने पांच स्वरूप के अभ्यास की बात कही, पता है ना पांच स्वरूप कौन से हैं? अनादि, आदि, पूज्य, संगम युगी और फरिश्ता। अब 5000 वर्ष के ड्रामा में हमारे स्वरूप तो कितने बदले होंगे, कैसे कैसे हुए होंगे। 5000 वर्ष की बात छोड़ो, एक दिन में ही हमारे स्वरूप कितने बदलते हाँ। पर श्रेष्ठ स्वरूप को बाबा ने याद रखने के लिए कहा कि ड्रामा में तुम्हारे ये श्रेष्ठ स्वरूप है, वो तुम याद रखो, क्योंकि तुम्हारा अब वही स्वरूप बनना चाहिए जो श्रेष्ठ है। ऐसे हर बात की श्रेष्ठ स्मृति बाबा ने दिलाई। जैसे सीढ़ी के चित्र से, तुम ही देवता थे और अब तुम्हें ही बनना। देखो ये स्मृति आते ही देवता बनने का पुरुषार्थ करने के लिए हम सक्षम बन गए, नहीं तो लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं कि अरे भाई ये क्या आप छोटे मुंह बड़ी बात करते हैं कि हम ही देवता थे। हाँ ये तो मियां मिट्टू बनने की बात आप कर रहे हैं, है ना। लोग तो सोच भी नहीं सकते, और हम साधारण आत्माओं में ये समर्थी आ गई, ये स्मृति का प्रभाव। स्वमान क्या है? श्रेष्ठ स्मृति है। स्वमान लेना कोई रटना नहीं है, हमें याद रहे हम कौन है। जैसे आप लोग स्कूल में भी नागरिक शास्त्र में, मैं समझती हूँ प्राइमरी में ही आता है, उसमें ये कहानी पढ़ी थी ना कि वो राजा का राजकुंवर कैसे भटक गया जंगल में, गुम हो गया, जानवरों के साथ रहने लगा तो जानवर जैसा बन गए, है ना, उनके नाखून बाल चाल जानवर जैसी हो गई। जब ये ढूंढते ढूंढते कहाँ गया कहाँ गया और जंगल से मिला तो देखा ये तो बिल्कुल जानवर जैसा बन गया, तो उनको फिर महल में लाकर उनका सारा वो चेंज करके उनको रोज ये प्रशिक्षण दिया गया कि तुम राजा के बेटे, ये तुम्हारी राजाई है, राजमहल है, तुम उतने इतने ऊंचे घराने के हो। तो फिर से उनके अंदर वो रॉयल संस्कार आने लगे। तो ये कहानी हमारी है ना, बाबा ने भी हमारे संस्कार कैसे बदले, कितना परिवर्तन हम सब में हो गए, क्योंकि बाबा रोज याद दिलाते तुम ही देवता थे, तुमने ही 84 जन्म ली, अब चक्र पूरा हो, अब फिर से तुमको बनना है ना। ये रियलिटी है, सिर्फ बातें नहीं, ये सत्य है। और जितना निश्चय पूर्वक, समझ पूर्वक और महसूसता के साथ हम स्वीकार करते हैं, उतना हमारे अंदर देवत्व जागृत होता जाता है। आज देखो हमारे जीवन में कितनी श्रेष्ठ धारणाएं हो, स्मृति आ गई ना, जब कोर्स करने आए तो कितने बजे उठते थे, ज्ञान नहीं था तो हम कितने बजे उठते थे, और अब अब कितना जल्दी उठने, ये चेंज कैसे आया, क्योंकि बाबा ने जगा दिया ना, आत्मा को जगा दिया कि तुम कौन हो, कौन सा समय है, कौन आया है और वो क्या कह रहा है। अवेयरनेस, बाबा ने स्मृति दिलाई, स्मृति से जागृति आ गई, तो परिवर्तन है। प्रथम पाठ से ही देखो, जैसे ही स्मृति आई कि हम आत्मा हैं, कहां हमारा जीवन लौकिक भौतिक सांसारिक दैहिक भावों वाला था और अब हमारा जीवन अलौकिक बन गया, आध्यात्मिक बन गया, चेंज हो गया। इसलिए पढ़ते जाओ और भूलते जाओ तो कुछ नहीं पुरुषार्थ होगा, याद। इसलिए बाबा कहते हैं स्टडी, अध्ययन करना है, सुनना है, समझना है, लिखना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, स्वरूप बनते जाना, ये रोज पुरुषार्थ चले। इसलिए टीचर तो सबको एक साथ एक सरीखा पढ़ाता है, पर अच्छा नंबर कौन सा स्टूडेंट लेता है, जो अच्छा होमवर्क करता है, जो होमवर्क करता है। फॉलो अप अच्छा कर। और पढ़ाई सहज है, कोई मुश्किल तो है नहीं, कोई इतने शास्त्र तो कोई बाबा ने दिए नहीं, सिंपल रोज की मुरली की रोज स्टडी अभ्यास। और सत्य ज्ञान से ही शुद्धि हुई। हमारे में इतनी पवित्रता कैसे धारण, बाबा ने कहा न सिंपल युक्ति, आत्मा आत्मा भाई भाई हो, तुम एक बाप के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी, आत्मा आत्मा भाई भाई। शुद्धि, पवित्रता, और पवित्रता का अपना बल है। बाबा के ज्ञान में आते ही ब्रह्मचर्य धारण किया, अन्न शुद्धि धारण किया, व्यसनों से मुक्त हो गए, होटेलों फिल्मों से मुक्त हो गए। कितनी शुद्धि हो गई, तो स्मृति से शुद्धि भी, शक्ति आई ना आत्मा, और शुद्धि से हमारा जीवन, हमारी पर्सनालिटी, हमारी वर्क स्टाइल, हमारा बिहेवियर, सब कुछ चेंज हो गया, अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया, हमारी दृष्टि वृत्ति सब कुछ बदल गया। पवित्र जीवन का अपना एक प्रभाव है। लोग महसूस करते, यहां कई यहां प्रोग्रामों में मेहमान आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लोगों के नयन ही कुछ अलग, क्योंकि देहभान से रोज डिटैच होते हैं तो रूहानियत आती। हमारी दैहिक भाव वाली दृष्टि नहीं, परंतु एक न्यारापन रोज हम प्रैक्टिस करते। तो बाबा ने आज भी मुरली में पक्का कराया, तुम श्रीमत पर याद और योग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से, अपने मन वचन कर्म से अपना स्वराज्य स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं ना, वो क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाते तो विश्व पर राज्य कर सकते थे, पर ये लॉ नहीं है, क्योंकि देह अभिमान देह अहंकार होता है, वो मिलके नहीं चल सकते। इसलिए कहते हैं कि बाहुबल से तुम किसी को हरा सकते हो, जीत रहे सकते हो, सबके दिलों को जीत सकते हैं, वो आध्यात्मिकता से, याद के बल से, प्यार के बल से, चरित्र के बल से। चरित्र जितना शुद्ध, आपका अपना एक प्रभाव समाज में पड़ता है। तो संगम युग में जो कुछ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है पुरुषार्थ में याद और पवित्रता के बल से हमें अपने आप को देवता बनाना, दिव्यता पवित्रता से, फिर आगे दिव्यता की। इसलिए लाइफ लॉन्ग पुरुषार्थ है ना, क्योंकि हमें बनना है। कथा सिर्फ सुननी नहीं है, हमें तो बनना है। समय पर श्रेष्ठ स्मृति रहने से हिम्मत रहती, शक्ति रहती। कोरोना काल में क्या रहा आपका रिजल्ट? हिम्मत रही ना? हाँ, कोई घबराए तो नहीं, चिंता तो नहीं हुई? हाँ, जिनको ज्ञान नहीं था उनको तो कितना दुखी हो गए, शॉक लगा, ये क्या जीवन में हो गया, घबरा गए, डिप्रेशन में कहीं चले गए। पर बाबा के बच्चे हर हाल में, हर परिस्थिति में हिम्मत रखते हैं, क्योंकि याद रहती है। बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने सब कुछ बताया, ये सब होना ही है, तो कोई घबराहट नहीं है। तो ये है स्मृति की शक्ति और पवित्र जीवन की शक्ति। ओम शांति।
सुंदर मार्गदर्शन, कईयों को हमने देखा नोट भी कर रहे हैं। तो इस मार्गदर्शन को क्या करेंगे के अनुसार अपने को चेक करेंगे और चेंज करेंगे। दीदी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।